हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध 21वें अध्याय के 12वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। जात हर्षो पतन मूर्धना क्षितो लब्ध मनोरथः गेभिस्त्वभ्यर्थनार्थरीति स्वभावात्मा कृतांजलि। इसका अनुवाद है तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। जब कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। तात्पर्य, भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार योग की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था मानी जाती है। भगवत गीता के 6वें अध्याय में जहाँ योग साधना का वर्णन है, भगवान के इस साकार रूप के दर्शन को योग की सिद्धि बतलाया गया है। आसनों तथा अन्य अनुष्ठानों का अभ्यास कर लेने के बाद अंत में समाधि अवस्था प्राप्त होती है। इस समाधि अवस्था में श्री भगवान के अंश रूप परमात्मा का या फिर उनके यावत रूप का दर्शन होता है। प्रमाणिक योग धर्म ग्रंथों में यथा पतंजलि सूत्र में समाधि को दिव्य आनंद कहा गया है। पतंजलि के ग्रंथों में योग की जो पद्धति वर्णित है वह प्रमाणिक है और आधुनिक तथाकथित योगियों ने प्रमाणिक ने अधिकारी विद्वानों के ग्रंथों को देखे बिना अपनी अपनी विधियां बना ली हैं जो अत्यंत व्यापक है। पतंजलि योग पद्धति को अष्टांग योग कहा जाता है। कभी कभी निर्विशेषवादी पतंजलि योग को दूषित कर देते हैं क्योंकि वह अद्वैतवादी है। पतंजलि ने बताया है जब आत्मा परमात्मा से मिलता है और उन्हें देखता है तो उसे दिव्य सुख मिलता है। यदि परमात्मा तथा व्यष्टि व्यक्ति के अस्तित्व को मान लिया जाए तो निर्विशेषवादियों का अद्वैत सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। फलतः है कुछ निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी दार्शनिक पतंजलि विधि को तोड़ मरोड़ कर पूरी योग प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त योग इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। भौतिक कार्यों में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार है: धार्मिक बनना, आर्थिक रूप से समृद्ध होना, इंद्रियों की तुष्टि तथा परमेश्वर के साथ तादात्म्य लीन होना, एकाकार एकत्व। अद्वैतवादियों के अनुसार जब योगी ब्रह्म के साथ युदात्कार प्राप्त कर लेता है और अपना व्यष्टि अस्तित्व खो देता है तो उसे कैवल्य कहे जाने वाले परम पद की प्राप्ति होती है, किंतु वस्तुतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की अवस्था ही कैवल्य है। यह समझ लेना कि परमेश्वर पूर्णता आध्यात्मिक है और पूर्ण आत्मबोध की अवस्था में श्री भगवान को समझा जाता है, समझा जा सकता है, कैवल्य कहलाता है। अथवा पतंजलि की भाषा में इसी को आत्मशक्ति का साक्षात्कार कहते हैं। उनके अनुसार जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा तथा परमात्मा के आत्मबोध में स्थिर हो जाता है तो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। पूर्ण आत्मबोध होने पर आत्म सुख का बोध होने लगता है जिसे भगवद गीता में परम सुख कहा गया है और जो भौतिक इंद्रियों से परे है। समाधि दो प्रकार की बताई गई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, अर्थात मानसिक चिंतन तथा आत्मबोध। असंप्रज्ञात अथवा समाधि में मनुष्य अपनी आत्मिक आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा भगवान के आत्मरूप का साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का यही अनंतिम उद्देश्य है। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य ईश्वर के परम रूप का निरंतर साक्षात्कार करता रहता है तो उसे सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, जैसा कि कर्दम मुनि को प्राप्त हुई थी। जब तक योग पद्धति के सामान्य सिद्धावस्था के परे किसी को यह सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक परम साक्षात्कार नहीं होता। अष्टांग योग पद्धति में 8 सिद्धियां होती हैं इन सिद्धियों को प्राप्त करने पर मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है, जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है, किंतु योग में ऐसी भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेना ना तो सिद्धि है ना परम साध्य। परम साध्य को यहाँ पर वर्णित है कि कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान को उनके नित्य रूप में देखा। भक्ति का शुभारंभ व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा या श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध होने पर होता है। इसे प्राप्त करने पर च्युत होने का, पतन का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई योग पद्धति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है किंतु उसके साथ ही वह अन्य भौतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। दिव्य आत्म सुख के बोध से भौतिक सुख का कोई वास्ता नहीं है, जिनको आडंबर पूर्ण योगी प्रोत्साहन देते हैं। भक्ति योग के वास्तविक भक्त अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं। वे अति शोक्तिपूर्ण भौतिक इंद्रिय दृष्टि से सर्वदा दूर रहते हैं। शिव भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए उद्यत रहते हैं। ओम ज्ञान तिग्रहस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुद्धितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्व पदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारोजातं सर्वगुणात्मान्वितं तं सजीवं साधयतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्वगणैः श्रीविशाखां च। हे कृष्ण परमां सिद्धो दिव्यन्तो जगद्गते गोपेशो गोपकान्तराधाकृष्णस्तेतत्कानिचद्वारान्ति राधा वृषभान सुते देवी प्रणामि हरिणी वाछाकृभ्य कृपा सिंधुकतीता वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवासवी कौर भक्ता हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्देशिष्यमाने पाश्चात्य देश। सो यहाँ पर बात हो रही है कि कर्दम मुनि ने समाधि की अवस्था में भगवान का ध्यान किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। तो भगवान का दर्शन कैसा था? सो भागवतम के 10वें श्लोक में इसे ध्यान के लिखा है कि मना स्पर्श स्मित एक शिना, कि मन को छू लेने वाला दर्शन था। भगवान ने दर्शन दिया, सारे उनके जो मन की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, पूरी हो गई एक्चुअली, है ना। भगवान ने आई गेस जब ध्रुव महाराज को दर्शन दिया था तो भगवान ने बोला कुछ मांगो, तो उन्होंने बोला कृतार्थ उसमें वरम न याचे। मैं मतलब सब पूरा हो गया, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनः स्पर्श, मन को भगवान ने छुआ और उसको चुरा लिया भगवान ने, बेसिकली ये आइडिया है यहाँ पर। तो जब कर्दम मुनि ने भगवान के दर्शन किए, दर्शन हुए तो क्या किया उन्होंने? जात हर्षो, उनको बहुत ही अत्यधिक मानसिक हृदय में सुख की प्राप्ति होगी, जात हर्ष हो, बहुत ही सुख की उनको अनुभूति हुई और उनको क्या लगा, लब्ध मनोरथा, सारी मेरे मनोरथ पूरे हो गए, कोई ऐसी डिजायरेबल वांछित वस्तु नहीं है जो अभी प्राप्त होनी बाकी है, जितनी भी मनोरथ जितनी भी वांछित वस्तु है सब प्राप्त हो गई भगवान के दर्शन मात्र से। ये मतलब बहुत ही कमाल की बात है, कैसे हो रहा है भगवान के दर्शन के लगने लग गया कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बात खत्म हो गई, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ और चाहिए, खत्म हो गया सब, कुछ और चाहिए का बात खत्म हो गई एक्चुअली। हाँ, लब्ध मनोरथा, जितनी भी मन की इच्छाएं थी सारी पूरी हो गई भगवान के दर्शन माध्यम से। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ जोड़े और भगवान को दंडवत किया और भगवान की स्तुति करने शुरू कर दी, भगवान को स्तुति करके उन्होंने भगवान को तुष्ट किया। सो जब भगवान के दर्शन करेंगे आप लोग, आप से तो रोज करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे मंदिर में आते हैं भगवान के दर्शन किए तो तुरंत दंडवत करते हैं भगवान को, हाँ, और हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हैं, क्या बोलते हैं, वेणु अपनंत मृदंगलयताक्षं बरहावतं सम असिताम्बुज सुंदरांगं कंतर्क कोटि कन्यातिशेष शोभा गोविंदमाधव पुरुषम। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो उससे दो काम होते हैं, एक काम तो होता है ऑफकोर्स भगवान व्यक्ति हैं, स्तुति भगवान की करेंगे तो भगवान को अच्छा लगता है नहीं, और दूसरा क्योंकि हम पूर्ववर्ती आचार्यों की भक्तों की जो स्तुति है उसको हम दोहरा रहे हैं तो भगवान को और भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान के भक्तों की प्रेयर्स है तो क्यों अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम किसी भक्त की प्रार्थना को दोहराते हैं स्तुति को भगवान के सामने तो भगवान को उस भक्त का स्मरण आ जाता है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, ये बंदा बढ़िया है, भगवान कहते हैं इसने मुझे हेल्प किया मेरे भक्त को याद करने के लिए, सो भगवान को डबल खुशी मिल जाती है। चलिए इसीलिए हमें अपने मन से मनगढ़ंत स्तुति नहीं बनानी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं हमें लगे बहुत ही बढ़िया विचार है, भगवान आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप क्या जच रहा है ये नीले रंग का, हाँ उत्तरीय नीले रंग का उत्तरीय कितना जच रहा है आपको। अब जैसे हमने बोला कि नीले रंग का उत्तरीय आप पे कितना जच रहा है वैसे दोष आ गया, सुनने में अच्छा लग रहा है कि नीले रंग का उत्तरीय आप पे कितना जच रहा है, लेकिन एक्चुअली में भगवान पर नीले रंग का उत्तरीय नहीं जच रहा, नीले रंग के उत्तरीय पर भगवान जच रहे हैं, भगवान आभूषणों पर आभूषण, हम समझेंगे कि हमने तो बहुत अच्छी स्तुति की लेकिन एक्चुअली में हमारी जो स्तुति है वो स्टैंडर्ड से कम है, जो स्टैंडर्ड है भगवान की जो महिमा है जो पराकाष्ठा है उसको छू नहीं पाएगी हमारी जो प्रेयर्स है जो हम अपने मन से बनाएंगे। इसलिए जो पूर्ववर्ती आचार्य जो प्रेयर्स कर रहे हैं जो उन्होंने भगवान के लिए की, जैसे ब्रह्मा जी ने की, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कोलाविचा सिंदर, यू नो कोलाविचा सिंदर, जब कोलाविचा सिंदर को भगवान जब सप्त प्रहरी या लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ जाके कोलाविचा सिंदर को बुला के लाओ, तो सारे भक्त कौरव चश्रीधर को बुला के लाए। तो भगवान ने दर्शन दिए कौरव चश्रीधर को। अब भगवान ने कहा कि मेरी स्तुति करो कौरव चश्रीधर। तो कौरव चश्रीधर ने क्या बोला कि मैं आपकी स्तुति कर ही नहीं सकता। भगवान ने कहा मैं एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारी स्तुति को, कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, ये भी स्तुति है कि आप इतने महान हो कि मैं आपके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता, जो भी बोलूंगा कम है बेसिकली। तो भगवान ने कहा मैंने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारी स्थिति। फिर भगवान ने सरस्वती को आज्ञा दी, सरस्वती देवी को जाओ हेल्प करो। तो सरस्वती देवी ने हेल्प की कौरव चश्रीधर की, और कौरव चश्रीधर ने बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अद्भुत प्रेयर्स की कौरव चश्रीधर ने। आप जब चैतन्य महाप्रभु की सप्त प्रहरी लीला पढ़ोगे तो आप उसमें देखना कितनी अद्भुत उन्होंने भगवान की महिमा का गुणगान किया कौरव चश्रीधर। सो हमारे लिए ये होगा कि हम जो हमारे आचार्य हैं, जो भक्त हैं, उनकी प्रेयर्स को भगवान के सामने लगाएं। इससे हमें, जैसे हमने बात किया, डबल बेनिफिट होगा। भगवान को डबल खुशी होगी, भगवान को डबल खुशी होगी तो हमें डबल बेनिफिट मिलेगा। ये बेसिक आइडिया है, इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है कि नहीं मैं अपने मन की बात क्यों नहीं बोलूँ। सो एक्चुअली मैं भगवान को अच्छा नहीं लगता कोई अपने मन की बात आके ऐसे भगवान के मन से बना के स्तुति करे। एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु ने एक रूल बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति आके ऐसे नहीं चैतन्य महाप्रभु के सामने आया और अपने मनगढ़ंत बात कहने शुरू कर दी। तो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी कौन थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो रूल था कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना चाहता है, चैतन्य महाप्रभु को कुछ सुनाना चाहता है अपनी रचना, तो पहले वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सुनाएगा। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनते थे और अप्रूव करते थे पहले कि हाँ सुनाने लायक है कि नहीं है। अगर सुनाने लायक नहीं होती थी तो भगा देते थे उसको। चैतन्य चरितमृत में वर्णन भी आता है कि एक डिवोटी थे, उनके ब्रदर को वो काशी से आए थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने कहा मैंने चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा में एक कविता लिखी है, मैं चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहता हूँ। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा अच्छा सुनाओ क्या लिखा। तो उन्होंने सुनाया, उन्होंने बोला कि उसमें कुछ ऐसा बात थी कि चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर लिया है, कुछ ऐसे उन्होंने टाइम बोली। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पप्पा सा भाग खबरदार सुनाई तो ऐसी बात है, चैतन्य महाप्रभु को नहीं अच्छा लगता ऐसी बात है। सो चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत स्थापित भी कर रखा है कि अपनी मनगढ़ंत बात मत करो। जो आचार्यों द्वारा प्रमाणित है, जिसका अनुमोदन आचार्य ने किया है, जो आचार्यों ने लिखा है, उसको दोहराओ तो वो हमारे लिए सुरक्षित भी रहेगा और हमारे लिए लाभ भी देगा, कल्याणकारी रहेगा। सो यहाँ पर श्री प्रभुपाद अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठ उसके स्टेप्स हैं, उसके प्रोसेस है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही कमाल की बात कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं देखो ये जो आठ स्टेप्स हैं, जो यम नियम आसन इत्यादि हैं, ये प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन है भगवान में ध्यान लगाने के लिए, हेल्प करने के लिए। ये अपने आप में गोल नहीं है, आसन करना गोल नहीं है, जैसे आज पतंजलि योग के नाम पर लोग बोल रहे हैं कि कपाल भाती करो, उल्टे सीधे आसन करो, अपने शरीर को एक्सरसाइज करो, स्वस्थ रख लो शरीर को, उन्होंने ये गोल बना दिया। तो ये बोल नहीं रहे कि पतंजलि योग, योग का क्या मतलब है, योग का मतलब है भगवान से मिलाना। अगर हम भगवान से मिला नहीं रहे, और पतंजलि ने बोला है एक्चुअली में अपने पुस्तकों में, पतंजलि ने बोला है कि देखो इस योग का ये जो यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ये सबका बेसिक गोल ये है कि परमात्मा की अनुभूति करना, अपने हृदय में परमात्मा को देख लेना और उन पर मेडिटेट करना, ये पतंजलि जो योग का बेसिक पर्पज है। अब वो पर्पज ही बेसिकली गायब कर दिया और सिर्फ आसनों पे बात करने शुरू कर दी कि देखो ये खाओ, ये मत खाओ, ये वाले आसन लगाओ और इन आसनों को करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, बस बात खत्म। जबकि ये बिल्कुल मतलब बकवास है, बोगस है। आसन करने से बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि वो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो टेम्पररी हैं। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितने भी तरह के योग हैं उनकी पराकाष्ठा भक्ति योग में होती है। श्रील प्रभुपाद ने बोला देखो जैसे आपने कर्म योग किया, निष्काम कर्म योग किया, निष्काम कर्म योग का उससे क्या प्राप्त हुआ, निष्काम कर्म योग से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होने पर वो जो निष्काम कर्म योग है वो ज्ञान योग में बदल जाएगा। जब ज्ञान योग के माध्यम से आसन इत्यादि करके जब भगवान पर, परमात्मा पर ध्यान लगाएंगे और जब वो ध्यान प्रगाढ़ हो जाएगा तो वो ज्ञान योग ध्यान योग में बदल जाएगा। वो जो ज्ञान योग है वो ध्यान योग में बदल जाएगा। और प्रभुपाद ने बोला कि यही अष्टांग योग है, एक्चुअली में जो पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है यही वो अष्टांग योग है। और श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब व्यक्ति प्रैक्टिस कर करके वो अष्टांग योग भी क्रॉस कर जाएगा, भगवान पर उसका ध्यान इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि हमेशा भगवान को देखने की उसकी जो उत्कंठा है वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, तो उसको भक्ति योग, वो भक्ति योग है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखो अगर कोई व्यक्ति जहां पर भी रुक गया, उसने प्रगति करनी बंद कर दी, तो वही वाला योगी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कर्म योग शुरू किया, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो वो कर्म योगी बन गया। और कोई कर्म योगी से आगे बढ़कर ध्यान योग, ज्ञान योग में पहुंच गया, वहां पर उसने बोला ये अब तो यही ठीक है, बस यही चाहिए मेरे को, इससे आगे नहीं जाऊंगा, तो वो ध्यान योगी बन गया। और इसी तरह से वो ज्ञान योगी बन गया, इसी तरह से ध्यान योगी आ गया, अष्टांग योगी आ गया। लेकिन जिसने ये सारी सीढ़ियां क्रॉस कर ली वो जो परम योगी है वो भक्ति योग तक बेसिकली पहुंच जाएगा। और जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग से बेसिकली 8 तरह की सिद्धियां मिलती हैं। और श्रील प्रभुपाद अपने रिपोर्ट में यहाँ पर उसका वर्णन भी कर रहे हैं कि लघीमा, हाँ लघीमा का मतलब है कि बिल्कुल लाइट बन जाना, एकदम जो पंख होता है, पंख हवा में फ्लोट करता रहता है नहीं, तो उस पंख से भी हल्का बन जाना, लघीमा, महिमा, प्राप्ति, ईशित्व, यशित्व, प्राकाम्य, कामावसायिता, ये 8 प्रकार की स्थितियां कि प्राप्ति का मतलब कुछ भी चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चल के चीज आ जाएगी, यहाँ पे यूं हाथ बढ़ाया उठा के ले आया, चाहे 2 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, हाथ बढ़ाया आ गई, काम खत्म हो गया। अनिमा छोटे से छोटा हो जाना, महिमा मतलब बड़े से बड़ा हो जाना। और श्रील प्रभुपाद अपने प्रपोर्ट्स में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्णा बुक के 87वें जो चैप्टर है 87 चैप्टर, उसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो 8 सिद्धियां हैं भगवान में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। और भगवान का एक नाम योगेश्वर है, भगवान में सारी जो सिद्धियां हैं वो अपनी पराकाष्ठा में अपनी चरम स्थिति में भगवान में उपलब्ध है। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान में सारी जो सिद्धियां हैं योग सिद्धियां ये भगवान में स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। जैसे अनिमा सिद्धि, अनिमा सिद्धि का मतलब है छोटे से छोटा बनना, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चिरांतरस्थ गोविंद मंदिरम जामे, भगवान एक एक कण में और दो कण के बीच में जो स्पेस है उसमें भी भगवान विराजमान है, भगवान इतने सूक्ष्म है। तो अनिमा सिद्धि का भगवान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने बोला कि कारणोदकशायी विष्णु के रूप में भगवान जब कर्णोदक समुद्र में विश्राम करते हैं तब जो श्वास छोड़ते हैं तो उनके जो पोर हैं वहां से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो एक ब्रह्मांड समझ नहीं पा रहे कितना विशाल है, असंख्य ब्रह्मांड उनके रोम कूपों से निकल रहे हैं जिस व्यक्ति के, वो व्यक्ति कितना विशाल है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्णा बुक में कि भगवान कितने महान है, महिमा जो सिद्धि है भगवान की भगवान उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लघिमा सिद्धि है, लघिमा सिद्धि का भगवान प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं कि भगवान हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान इतने हल्के हैं कि भगवान के स्पर्श के प्रभाव से सारे ब्रह्मांड भी जो हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड वो भी पंख से भी हल्के हो जाते हैं और वो भी ब्रह्मांड में तैरना शुरू कर देते हैं। अरे क्या प्रभुपाद कैसे ऐसी बातें मतलब बता सकते हैं, मतलब कहाँ से प्रभुपाद ये रियलाइजेशंस निकाल के ला रहे हैं और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अमेजिंग है एक्चुअली। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन है वेटलेसनेस की, या मतलब लघिमा सिद्धि की। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के पास प्राप्ति सिद्धि भी है, तो बोलो कैसे, अरे भगवान को जो चाहिए प्राप्त कर लेते हैं सिंपल जो चाहिए भगवान की, भगवान का एक नाम अच्युत है, अच्युत का मतलब है कि भगवान की इच्छा कभी भी विफल नहीं होती है ना, भगवान को जो चाहिए टक से भगवान के हाथ में आ जाएगा, बात खत्म हो गई। अरे इसी तरह भगवान के पास ईशिता शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर है, भगवान परमेश्वर है, हर देवी देवता हर जीव भगवान के नियंत्रण में, हर जीव बड़े से बड़ा देवी देवता भगवान के नियंत्रण में, सूर्य देवता ब्रह्मा जी ने बताया है ब्रह्म संहिता में, उन्होंने बताया है कि जो दुर्गा देवी है वो भगवान के छाया के रूप में काम कर रही है, जो शिव जी हैं वो जैसे दूध से दही बनता है ऐसे भगवान से शिव जी बने, और शिव जी का काम है भगवान की सेवा करना। और उन्होंने बताया गणेश जी जो है, गणेश जी उनके गणेश जी में जो ताकत है विघ्न हरने की, वो ताकत कैसे आई, यदपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समेस गणाधि राजा, कि गणाधि राजा मतलब गणेश जी के जो दो सिंह हैं दांत हैं उस पे भगवान ने अपने दोनों चरण कमल रखे हुए हैं। तो उस स्पर्श की शक्ति से गणेश जी के पास तीनों लोगों का विघ्न हटाने की ताकत है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और किसी ने पूछा कि अच्छा आपने सबके बारे में बता दिया, अपने बारे में बताओ, आपका क्या सिचुएशन है, आप क्या महान हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं भी महान नहीं हूं। उन्होंने बोला यथा भास्वान अश्म शुक्लेशु आई डोंट रिमेम्बर श्लोक याद नहीं आ रहा, कि जितना सूर्य का प्रकाश जब एक मणि पर पड़ता है तो वो प्रकाशमान हो जाती है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वो मणि प्रकाश नहीं देगी। हाँ, इसी तरह से भगवान अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर फेंक रहे हैं तो उस कृपा दृष्टि के बल पर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अगर भगवान की कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं होगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सूर्य इत्यादि जो यह चक्षुरे सविता सकल ग्रहाना राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रम कालचक्र, और जो सूर्य है वो बहुत शक्तिशाली है, सारे ग्रहों का राजा है, लेकिन भगवान की आज्ञा से भगवान के डर से अपने एक्सिस पे ध्रुव पे चल रहा है, चक्कर काट रहा है, ना एक इंच इधर होता है ना एक इंच उधर होता है, जो फिक्स भगवान ने नियत कर रखा है, देख भैया तुझे यूं ही घूमना है। सो सूर्य वैसे ही घूम रहे हैं। तो हमारे लिए ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बहुत ही कमाल की एक्चुअली में बात है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा है 5-6 महीने का 1 साल का, उसमें कितनी ताकत है कोई ताकत? वो यार थप्पड़ मार के नीचे गिर जाएगा, उठ भी नहीं पाएगा, रोता रहेगा। लेकिन वो जो 1 साल का बच्चा है अगर किसी तरह से अपने पिता की गोदी में चढ़ गया पिता की गोदी में चढ़ गया तो उसमें कितनी ताकत है? तो उसमें उतनी ताकत आ जाएगी जितनी पिता की ताकत है, उसमें उतनी ताकत आ जाएगी जो पिता की ताकत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम भगवान की गोदी में चढ़ गए नहीं, कैसे लोग बात नहीं कंक्लूजन निकाल के हमें पकड़ा दिया नहीं? अगर हम रेंग कर हमने भगवान की गोदी में शरण ले ली, भगवान के शरणागत हो गए, इस संसार का भौतिक जगत की कोई भी वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इम्पॉसिबल। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आए और आपको नुकसान पहुंचाए। और कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं, कृष्ण ये बात बोल रहे हैं कि माँ में हुए बदलते माया में करते, कि बस भैया मेरे शरण में आ जाओ, उसके बाद ये माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल भी मांगा नहीं हो सकता। इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज को उनके पिता ही मारने पर तुला था। अब सपोज आप घर में आराम से बेड पर लेटे हुए हो, अचानक आपके डैडी आए तलवार लेके और बोले भैया आप की तरह गला काटूंगा, कौन बचाएगा उसको? कोई नहीं बचा सकता, नहीं, इम्पॉसिबल है बचाना। और अगर पिता पूरे गैंग के साथ आ जाए कि भैया हो सकता है तो कॉम्बैट में एक्सपर्ट हो, मेरे से 1-to-1 फाइट में जीत ले, लेकिन अब गैंग ही आ जाएगा तो क्या कर? लेकिन प्रहलाद महाराज छोटे से बालक, हाँ, और संसार का इस
भौतिक जगत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हिरण्यकशिपु को मारने पर तुला था, बाल भी बांका नहीं कर पाया। क्यों बाल भी बांका नहीं कर पाया? क्योंकि हर वस्तु की एक प्रकृति है, एक धर्म है। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म तरलता, जहर का धर्म है जिसने भी खाया उसको जला दो, खत्म कर दो, मर जाएगा। और जो पहाड़ है उनका धर्म है दबाना, भारी होते हैं ना। और जो तलवार है, जो भाले हैं, उनका क्या धर्म है? नुकीले होते हैं, चुबाओ तो अंदर मारो तो घुस जाएंगे, फिर नहीं चुभन है उनका धर्म। तो ये इन वस्तुओं को वो धर्म प्रदान किसने किया? भगवान ने प्रदान किया। भगवान ने बोला कि भाले को भगवान ने बोला भैया तो चुभियो मत, पत्थर को बोला भाई तेरा भार खत्म कर दिया थोड़ी देर बिना भार के जी। तो पत्थर फेंके प्रहलाद महाराज पे, तो भार ही नहीं है तो पत्थर क्या कर लेगा? भाले चुभाए, तलवारें मारी। जब वो धर्म ही खत्म हो गया, वो पोटेंसी शक्ति खत्म हो गई, सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, वो जहर इंजेक्ट कर दिया प्रहलाद महाराज में, लेकिन वो जो विष की शक्ति जो धर्म ही भगवान ने बदल दिया, तो क्या बिगाड़ लेगा? पानी में डुबोने का जो धर्म था भगवान ने खत्म कर दिया। तो प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं हो पाया है। तो अगर भगवान की शरण लेंगे अगर, तो वही शक्ति मिल जाएगी जो भगवान की शक्ति है, वही शक्ति। एक परसेंट भी फर्क नहीं रहेगा, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और इस प्रबोध में श्रीमद् प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। श्रीमद् प्रभुपाद अद्वैतवादियों की बात कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हर चीज जो है, जो अद्वैतवादी और निर्विशेषवादी शून्यवादी दार्शनिक वो पतंजलि योग की विधि को तोड़ मरोड़ कर पूरी योग की प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। उनका गोल ये है अद्वैतवादियों का, मोनिस्ट्स का, कि कुछ भी है गोल है भगवान में लीन हो जाओ तो परम सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में बोलते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। जब ये कहा जाता है कि अद्वैतवादी जो जब भगवान में लीन हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब मोक्ष मिल जाएगा तो परम सुख की का अनुभव होगा, तो सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में बोलते हैं कि अगर अस्तित्व तो खत्म हो गया तो सुख का अनुभव कैसे होगा? अनुभव हो रहा है इसका मतलब अस्तित्व तो है, अनुभव हो रहा है इसका मतलब अस्तित्व है। अगर अस्तित्व नहीं है तो अनुभव नहीं हो सकता। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं डिसाइड कर लो क्या चाहते हो। अगर अनुभव लेना चाहते हो परम सुख का, तो इसका मतलब आपको अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। और श्री प्रभुपाद यहां पर यही बात बोल रहे हैं कि जैसे हम अनुभव की बात कर रहे हैं, जैसे हम भगवान और भक्त की बात करते हैं, निर्विशेषवादियों का सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है, कट जाता है वो सिद्धांत, उसमें कुछ भी तत्व सब्सटेंस नहीं है उसके अंदर। क्योंकि अगर अनुभव है, अनुभव होने के लिए आपका होना आवश्यक है, और जो अनुभव भगवान का दर्शन करके होता है वो अनुभव के सामने मोक्ष का, भगवान में लीन होने का, क्या भगवान में लीन होना है भी या नहीं, भगवान में लीन होने की स्थिति भी होती है, लेकिन वो लीन होने की स्थिति तो राक्षस भी प्राप्त कर लेते हैं। कंस ने प्राप्त कर ली, शिशुपाल ने प्राप्त कर ली, बकासुर अगासुर सब भगवान में लीन हो जाते होते जा रहे थे। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जब जो लाभ असुरों तक को मिल रहा है उसके पीछे आप क्यों भाग रहे हो, भक्तों को तो कुछ और एक्स्ट्रा कुछ अद्भुत होना चाहिए जिसके सामने भगवान में लीन होने के सुख को। एक्चुअली में जो भगवान में लीन होने का सुख है वो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बेसिकली सेंसेशन ऑफ मटेरियल मिजरी है, मतलब भौतिक दुखों का, भौतिक क्लेशों का अंत है। भौतिक क्लेशों के अंत को बोल देते हो यहाँ परम सुख मिलना शुरू हो गया। एक्चुअली में वो जो भौतिक क्लेशों का अंत है वो भी बहुत बड़ी स्थिति है, लेकिन सुख का जो एक्चुअली में जो सुख है, हैप्पीनेस है, जो आनंद है, वो तो अभी अनुभव किए ही नहीं, वो तो अभी अनुभव हुआ ही नहीं हमें। सो सनातन गोस्वामी श्रीपाद ने बेसिकली ये पॉइंट लाके रखा कि जो भगवान के दर्शन करने में, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का जो सुख है, उसके सामने मोक्ष का सुख जो है वो तृण के समान तुच्छ हो जाता है, वो तृण के समान तुच्छ हो जाता है। अष्ट सिद्धियां विद्या सब बकवास है, सब बकवास है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अष्ट सिद्धियों की वैल्यू क्या है। मान लिया आपने प्राप्त कर लिया सिद्धि, एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने बोला कि श्रील प्रभुपाद हमें तो लगता है कि बेकार है वो पानी पे चलने की सिद्धि, वो हवा में उड़ने की सिद्धि। श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं होती हैं ये सिद्धियाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती हैं ये सिद्धियाँ, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि वो सिद्धियाँ बेकार हैं, टेम्परेरी। आप मर गए सिद्धियाँ खत्म हो गई बेसिकली। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सिद्धियों की कुछ वैल्यू नहीं। आप बोलते तो पानी पर चल रहे हैं, तुम्हें 25 पैसे दे के बोट में बैठ के पानी में चल लेता हूँ। आप बोलते तो हवा में उड़ना है, वो तो भगवान ने करोड़ों पक्षी बना दिए जो बिना किसी एफर्ट के हवा में उड़े जा रहे हैं। तो ऐसी सिद्धियां लेके फायदा क्या है। प्रभुपाद ने उन सिद्धियों के पीछे की मानसिकता को बताया। श्रील प्रभुपाद ने बोला देखो ये जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां के पीछे जो मकसद है लोगों का, वो मकसद है धन और पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मकसद है कि हम इन सिद्धियों का प्रदर्शन करेंगे और हम लोगों से धन अर्जित कर लेंगे। एक्चुअल जो योगेश्वर है वो कृष्ण है, जैसा श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, कृष्ण बुक में एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद 87 चैप्टर। और श्रील प्रभुपाद ने उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल श्रील प्रभुपाद ने बताया, जब कलकत्ता मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, इनॉग्रेशन हो रही थी, तो श्रील प्रभुपाद भगवान का दर्शन कर रहे थे। उन श्रील प्रभुपाद के पीछे उनके डिसाइपल खड़े थे, शायद उनका नाम अच्युतानंद ठीक से याद नहीं आ रहा नाम। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद बहुत ही ध्यान से भगवान का विग्रह का दर्शन करते, बहुत ही भावावेश में थे श्रील प्रभुपाद। तो उनके वो डिसाइपल ने श्रील प्रभुपाद के कान में बोला कि श्रील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण के आगे बंसरी है वो उल्टी है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण उल्टी बांसुरी भी बजा सकते हैं। सो ये कन्विक्शन है, ये एक सिंपल एग्जांपल है, और सिंपल एग्जांपल के द्वारा श्रील प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान एक्चुअली में योगेश्वर है, और हम जो सुख भगवान अनुभव कर रहे हैं उस सुख का हम भी अनुभव कर सकते हैं, केवल हम अपनी जो झूठे अहंकार को, फॉल्स ईगो को हम त्याग दें। तो क्या झूठे अहंकार को त्यागना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली में आपको जान के हैरानी होगी, मैं उसे रूपानंद से भी चर्चा कर रहा था कि एक्चुअली में झूठे अहंकार को त्यागना सबसे आसान काम है। योग वशिष्ठ गीता में बताया गया है कि झूठे अहंकार को त्यागना, फॉल्स को त्यागना पलक झुकाने से या फूल लगा हुआ उसको तोड़ने से भी इजी है, इतना इजी है पॉजिटिव को त्यागना। लेकिन हम बेसिकली इसको त्याग नहीं रहे। जरूरत है कि हम अपने झूठे अहंकार को, कर्ता भाव को, इस भौतिक झूठे नश्वर संसार को भोगने की प्रवृत्ति को छोड़ें और भगवान की शरण में, भगवान की गोदी में जाकर बैठ जाएं, भगवान के चरण कमलों की सेवा शुरू कर दें। और जो आध्यात्मिक संसार का सुख है उसकी अनुभूति लेना शुरू कर दें। ये सारे शास्त्रों का बेसिक उद्देश्य हम लोगों को यही एनकरेज करना है कि जिस प्रकार भगवान ने कर्दमुनि को दर्शन दिया और दर्शन देके उनके मन को छू लिया, और जो अनुभूति कर्दमुनि को भी लब्ध होने था, उनको लगा ओह माय गॉड सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो हम भगवान के दर्शन करके हमें भी ये अनुभूति आनी चाहिए। वो अनुभूति कैसे आएगी? जितना हम भगवान की शरण लेंगे उतना ही हम इस अनुभूति को महसूस कर सकते हैं, इस अनुभूति को अपनी संपत्ति बना सकते हैं। ठीक है, ओके, यहीं पे इसको नाम देते हैं श्री गुरुपाद की।